कुछ फल मूल लेकर उन्होंने सागर पे जन्म की। पहला महीना भी दूसरे महीना में वे छह दिन अंतर अंतर में पेड़ से अपने आप जो पत्ते गिर जाते थे वो उसको भजन करके उन्होंने छह दिन अंतर में एक बार भजन करते थे और भजन में बैठे रहते थे। अभी तीसरे महीना में नौ दिन अंतर अंतर में हुए कुछ पानी लेकर के भजन किया और चौथ महीना में उन्होंने बारह दिन अंतर में एक बार केवल धुआं ले लेते थे वायु लेकर के उन्होंने भजन किया और उन्होंने पंचम महीना में उन्होंने वहां भी छोड़ दिए और छठे महीना में उन्होंने अपना प्राण वायु ही उन्होंने खींच लिया। ऐसे ही सारा दुनिया का इतना वायु सब के सब बंद हो गया। काल के बगैर सारे देवता तड़पने लगे और भगवान से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु ध्रुव इतने कठोर तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या के द्वारा ये वायु को भी उन्होंने बंद कर दिया, इसे आप जल्दी से जल्दी जाकर के उसको दर्शन दो, जैसे सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे। जिस समय ध्रुव एक चरण पर खड़े होकर के भजन कर रहे थे, जैसे एक हाथी किसी नाव के ऊपर जैसे प्यार रखने पर नाव जैसे डगमगाता है, उसका भजन की इतना शक्ति था कि संपूर्ण पृथ्वी में डगमगाने लगा। इतने में भगवान स्वयं उसका भजन से संतुष्ट होकर के भगवान स्वयं वहां पर प्रकट होंगे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, नारद जी जिस स्वरूप को अपने उपदेश दिए थे, ऐसे नहीं गुरु जी जैसे जैसे स्वरूप को उपदेश दे दिया, इसलिए गुरु जी जो स्वरूप को उपदेश देते हैं, जिस स्वरूप का हम साधना भजन करते हैं, वही स्वरूप ही सामने आकर प्रकट होता है, क्योंकि वह जो दिव्य मंत्र है वो मंत्र कोई साधारण नहीं, वो मंत्र साक्षात भगवान से मंत्र अपना है। इसलिए मंत्र का जो अधिष्ठान देवता, इसलिए जिस मंत्र को वो ध्यान करते हैं उसी मंत्र का ही अधिष्ठान देवता प्रकट होते हैं। इसलिए नियम है ये मंत्र ऐसे नहीं, अभी जगत में ऐसे गुरु हो गए तो किसका मंत्र तुम लेना चाहते, शंकर जी का आओ शंकर जी का मंत्र ले लो, कोई बोलते किसको पूजा करते दुर्गा जी का आओ दुर्गा जी का मंत्र ले लो, कोई बोलेगा तुम किसको कौन सा देवता तुमको अच्छा लगना है गणेश जी बोले आप गणेश जी का मंत्र ले लो, तुमको बोले कृष्ण आप कृष्ण मंत्र ले लो। सबसे ये लोग एक मिठा गाते हैं गुरु रूप में, लोग बड़े ठगी है। मंत्र ऐसे नहीं होता है कि एक बिजनेस बना लिया पुराण ग्रंथ से मंत्र को पढ़ करके ये मंत्र को रख लिया और ये मंत्र को आप तेरे को मंत्र को नहीं, ऐसे कभी नहीं होता है। जैसे हमारे संप्रदाय में हम जिनको उपासना करते हैं राधा कृष्ण को, गुरु जी को उसी परंपरा से ब्रह्मा को गौड़ीय संप्रदाय का परंपरा से ही साक्षात भगवान ने पहले ये मंत्र ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी, नारद जी ऐसे करते करते गुरु परंपरा से ये मंत्र अखंड रूप में अभी तक है। इसलिए अगर हमारे गुरु जी को पास में आकर के इनका मंत्र राधा कृष्ण को भजन कर रहे हैं, अगर इनको पास में आकर के कोई बोले हमें नारायण का मंत्र दे दो, नारायण मंत्र नहीं दे सकते क्योंकि गुरु जी से मंत्र नहीं मिला है। अगर कोई राम का मंत्र मांगे तो राम का मंत्र नहीं दे सकते क्योंकि राम का मंत्र गुरु से मिला नहीं, अधिकार के लिए मंत्र देगा। अभी गुरु परंपरा से जो मंत्र मिला हुआ ये वही मंत्र को दे सकते हैं और वो मंत्र साथ में करने पर जो ठाकुर जी प्रकट होंगे वही स्वरूप ही सामने प्रकट होगा। इसलिए ये चीज को अच्छे तरह से समझनी चाहिए। अभी जगत इतने भ्रष्टाचार हो गया, मंत्र को ऐसे बिजनेस बना दिया क्योंकि जगत में नाम होगा कितना तो चला, कितने चला है एक करोड़ चला है, लेकिन भजन भजन से कोई मतलब नहीं। उनको पूछो तुम्हारा इष्ट कौन बता दे, तो किसको भजन करते हो, कौन इष्ट है, कौन परंपरा है, कौन सा संप्रदाय, कुछ कुछ भी बता दे उनको। हाँ हम तो गुरु मंत्र ले रखिए, ऐसे काम नहीं चलता। इसे नारद जी जो मंत्र उन्होंने दिया था उसी मंत्र का जो ध्यान जो पूजा बताई गई सामने जब प्रकट हुए तो स्वयं सामने प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के जिस रूप में उसी स्वरूप को उन्होंने दर्शन किया। तो निराकार स्वरूप नहीं बना कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। इसलिए उन्होंने साक्षात भगवान को उन्होंने सामने दर्शन किए। तब दर्शन किए भगवान उसको करना चाहते बोले ध्रुव अभी घर आ गए, वो तो राज्य लोग से और अपना मैया को राजमाता बनाए इसी लोग से आए थे, बोले घर आ गए। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा की बात है, हम क्यों भगवान भक्ति करें दूसरे देवा देवताओं क्यों नहीं भजन करें, जब ये आए थे भजन के लिए उनके हृदय में इच्छा था मैं राजा बनूं और माता को राजमाता बनाऊं। लेकिन भगवत दर्शन करने का एक विशेष फल है, जब भगवत दर्शन जीव करता है उसका हृदय से सारे कामनाएं हृदय से समाप्त हो जाता है। जब उन्होंने भगवान का वर मांगो तब ध्रुव कहता है कि प्रभु कहते स्थानाभिलाषी प्रभु राज्य लोग से आपको भजन करने के लिए आया था, अगर कोई व्यक्ति ताज की टुकड़े को ढूंढते ढूंढते अगर उसको दिव्य रत्न मिल जाए तो प्रभु जगत ऐसे कौन सा मूर्ख ऐसे होगा जो कि दिव्य रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़े को तरफ नहीं जाएगा। हे प्रभु देव मुनिन्द्र कुछ जिस भगवान को पाने के लिए देव ऋषि भूमि कर्म कर्म साल तक कोई चाहिए तरफ आग लगा करके कोई सिर नीचा पैर ऊपर करके कठिन कठिन कठोर तपस्या करते हैं उनके लिए आप असंभव दर्शन है, आपका दर्शन नहीं कर पाते लेकिन वह दिव्य वस्तु आप साक्षात मिले हो प्रभु तृप्त अस्मि करम न जाचे प्रभु मैं आपको दर्शन करते हुए तृप्त हो गया, ये वर का चक्र मेरे को मत डालिए आपका भक्ति हमें दीजिए। देखो भगवान को पाने का बाद जीव हृदय में कोई लालच नहीं रहता और भगवान उसको क्या दिया कुछ वर मांगो प्रभु अगर देना चाहते हो आपका भक्तों का संग भगवान ने कहा जब मैं साक्षात मिल गया फिर ये भक्त का संग क्यों चाहते हो क्या जरूरत है तो प्रभु आप तो आपका कथा नहीं सुनाओगे ना आपका महिमा तो आप नहीं सुनाओगे ये तो केवल भक्त लोग ही आपकी कथा सुनाते हैं। इसलिए अभी अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे जब भगवान कपिल देव के घर में भगवान कर्तव्य ऋषि को घर में जब अपने प्रकट हुए यहाँ पर विश्वनाथ शर्मा की बात बता रहे हैं जब साक्षात भगवान अपने वो आगे कर्तव्य ऋषि को घर में लेकिन ये कर्तव्य ऋषि सन्यासी लेने को निकल गए। हम क्यों भजन करते हैं भगवान हमें मिल जाए अभी साक्षात अपने प्रकट हो गए कर्तव्य ऋषि घर में लेकिन अपना बेटे भगवान जानता ही भगवान क्योंकि शादी से पहले उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना किया
प्रकट करा देता है। इसलिए हम
हमारा कृष्ण प्रयोजन नहीं, हमारा प्रेम प्रयोजन है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सर्व धर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। इसलिए अभी कपिल देव ने देखा हमारा कृष्ण प्रयोजन नहीं, हमारा प्रेम प्रयोजन है। इसलिए साधक लोग ज्यादा जो ये कहते हैं, साधक लोग भजन के ऊपर ज्यादा शक्ति देते हैं, अपना भजन के ऊपर ज्यादा शक्ति देते हैं। जानते हैं अगर हम भजन करके सही सही रूप में भगवान भजन के द्वारा ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। अगर भजन नहीं हमारा हृदय में, जैसे कंस भी भगवान को देखा, रावण भी साक्षात राम को देखा, शिशुपाल भी साक्षात कृष्ण को सामने देखा, लेकिन 101 गाली उन्होंने दे दिया। साक्षात भगवान जिनको दर्शन करने मात्र सब कुछ दूर हो जाते हैं पाप, साक्षात भगवान मेरे गाली को आपको गाली देते जा रहे हैं। क्योंकि हृदय में अगर प्रेम नहीं रहेगा तो साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाएगा, कोई लाभ नहीं। इसलिए हमारे प्रेम प्रयोजन है। इसलिए उन्होंने देखा हमको प्रेम चाहिए, भगवान से भी उनका प्रेम बढ़ा है, भजन बढ़ा है। इसलिए उन्होंने साक्षात भगवान घर में आने पर भी उन्हें छोड़ करके विश्वास उन्हें छोड़ करके प्रभु जी उन्हें भजन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ध्रुव जी को बोले तुम वर मांगो, कहते प्रभु अगर वर देना चाहते हो मुझे आप नहीं चाहिए, आपका भक्त का संग चाहिए। इसलिए भागवत में ये बात हो पुनः पुनः, इसलिए मामो उत्तम श्लोक सत्य, इसलिए आपको भक्तों को साथ में सख्यता हो, आपका भक्त का ही संग मिले। भागवत में साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र गए, भगवान का संग कहीं नहीं बताया, वो संतों का संग मांगते हैं। कहते क्यों? कहते संतों का संग में भगवत कथा सुनने को मिलता है। अरे यही भगवत कथा ही, अभी महाराज वर्णन कर रहे थे देवकी भगवान से किए, देवकी क्या मांग रहे थे भगवान, देवकी को क्या बोल रहे थे, सतां पसंदात मम विरज संभितो भवत व्यतिकर्ण रसाय कथा। भैया अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहो तो भक्तों का संग करो, भक्तों का संग द्वारा ही श्रद्धा रति भक्ति केवल भक्त संग से ही मिलता है। इसलिए ध्रुव यहाँ पर भगवान का निर्माण करके कहते प्रभु आपका भक्तों का संग तो एक वो हो जाएगा, तुम तुम्हारा लिए कुछ मांगो, लेकिन वो कुछ मांगे ही। तब भगवान स्वयं उनको दीपक 36,000 साल तक दृष्टांत के रूप में दीपक राज्य को उन्होंने प्रदान किया और बोले इसको बाद में तू घर मेरे नित्य धाम में चला जा। लेकिन जब वो वापस आए ना सुखी होकर नहीं आए, रो रो कर कहा रहे वे क्यों, भगवान उसको दीपक पूरा धाम दे दिया और उसको बाद में धाम दिया, बोले इस जगत को दृष्टांत रूप में वो करो, लेकिन दुखी क्यों हो रहे थे। देखो साक्षात भगवान मिले, साक्षात भगवान मिले, एक भगवान मिले को कहाँ बचा दिया, फिर संसार में बचा दिया। जिस संसार में ये हम तरसते हैं राज्य के लिए तो बिल्कुल फंसा दिया। देखो भक्ति होने पर भक्ति का क्या लक्षण है, और भगवान उसको चिरकाल के लिए उसको अपना धाम में स्थान दे दिया। लेकिन अगर कोई दूसरे देवादि को अगर कोई उपासना करते हैं, देवादि को क्या करते हैं, आप जो मांगोगे सो दे देंगे और इस घोर संसार में आपको डाल देंगे, माया का बंधन में आपको डाल देंगे। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी की बात को पुनः पुनः बताए, अकाम सर्वदाम वा मत्स्यताम उदारधी कि प्रेण भक्ति योग ने जजे तो पुरुषम पर। अगर भजन करना दूसरे जवाब भजन मत करो, तो पुनः पुनः मना किया, भजन करना अकाम सर्वदाम वा, अगर तुमने सारे कामना वासना अपनी ले रहे हो, नहीं तो कामना वासना छोड़ कर भी हो, अगर मुक्ति काम के लिए तुम हो तो इधर उधर जवाब उपवासना मत करो, जजे तो पुरुषम पर एकमात्र भगवान कृष्ण को ही पूजा करो, क्योंकि वही हमारा पिता माता सब कुछ वही है। उनका भजन करने पर देखो ध्रुव जी को उन्होंने क्या किया, जिस राज्य के लिए हम तरसते हैं वो राज्य दिया, और अंतिम में क्या देते हैं, उस अंतिम में भगवत लोक उन्होंने दिया है, अपना चरण को दिया है, इसी जगत की इच्छा पूर्ण करके उसी जगत को दिया। लेकिन देवादेव की उपासना करने पर अब लोला देव ठगा देंगे, संसार का विषय लेकर के ऐसे बांध देंगे, जन्म जन्मांतर उसमें भटकते रहो, उसमें घूमते रहो। इसलिए हम लोगों को केवल भगवत उपासना करनी चाहिए। अभी ध्रुव जी ने दिव्य राजत्व की, राजत्व के बाद में भजन करते करते भजन कर रहे थे, अभी वैकुंठ भगवान दिव्य धाम से उनके लिए विमान भेजा, इसमें बैठो और अपना लोक में चलो। अभी ध्रुव बैठने के लिए जा रहे थे, इतने में उनको मैया की याद आ गई, फिर मेरे मैया कम भी है, फिर मैया को बिना देर में नहीं जाऊंगा। कहते क्यों मैया को नहीं याद कर रहे हो, आज जो मैंने भगवान भगवान को प्राप्त की ये मैया की कृपा है। अगर मैया की चरणी को वध से नहीं देती तो आज मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए मैया के लिए मैं नहीं जाऊंगा। देखा है, देखो तुम्हारी मैया तेरे से पहले को जो रथ जा रहा है ना, उससे पहले तुम्हारी मैया रथ पर बैठ कर भी जा रही है। यहाँ शिक्षा क्या देते हैं, अगर मैया हर मैया को यही करता पहले अपना बच्चों को भजन की शिक्षा दे। देखो ध्रुव जी को उन्होंने भजन की शिक्षा दिया तो उसको प्रभाव से माता जी की उद्धार होगी। अगर बच्चों को भजन का उपदेश नहीं दोगे, शास्त्र बहुत गाली होता है, इतना उल्टा सीधा गाली होगा फिर उसको बांध लेना ही सही है। इसलिए पुत्रवती की पति कौन है, सुमित्रा बोलती है, लक्ष्मण जो बोल रहा है भैया मुझे आदेश दे दो, भैया और भाभी राम सीता वो वनवास जा रहे हैं, मुझे आदेश दो उनको सेवा के लिए जाऊं। सुमित्रा उसमें बड़ी खुश होती है, कहते बेटा पुत्रवती जुवती जगत सोई, रघुपति भक्ति जासूस सुत्र हुए, वही माता की ही गर्भ धारण करना सार्थक इसका बेटा रघुपति भक्ति भगवान का तो भक्ति करे, नहीं तो उससे तो माता को बांध रहना ही। अगर बच्चों को भजन की शिक्षा नहीं दे सकते, शास्त्र बोलता है अवैष्णव संत पुत्रा जननी सुखद समय, सब ही बेटे हमारा हो जाए, अगर बच्चों को भजन का शिक्षा नहीं दे सकती है तो उनका बच्चों को जन्म देना अधिकार है। इसलिए हर माता की कर्तव्य है अपना बच्चों को भजन का शिक्षा दे। अगर बच्चे भजन नहीं करते फिर उसका भी कुपरिणाम ये पिता माता को देना पड़ता, क्योंकि आप बच्चों को भजन सिखा नहीं दिया और वो गंदी रास्ता पर गए, फिर उसका जो कुफल है उसको भी पिता माता को लेना पड़ता है। इसलिए हर पिता माता का कर्तव्य अपना बच्चों को भगवत भक्ति का रास्ता पर चलाए। अगर भगवत भक्ति का रास्ता पर चलाएंगे, एक बच्चा भी प्रभु का भजन करेगा, शास्त्र बोलता है कुलम पवित्रम जननी पिता का वसुंधरा वसतिश्च कन्या नृत्यति स्वर्ग पितर पितरसा जैसा कुले वैष्णव नाम है। किसी खानदान में एक संतान भजन के लग गया तो कितने लाभ है, त्रिसप्तमी पिता पुत्र 21 पुरुष उसको उद्धार हो जाते, जननी पिता था जो मैया उसको जन्म दी उसका जीवन में घटना निर्दय स्वर्ग पितर पितरसा। जितने हमारे पूर्वज लोग जब देखेंगे हमारा खानदान कोई भक्ति करने वाले जन्म हो गया वो नाच उठते हैं हाथ उठा करके, हमारा अहोभाग्य है हमारा मनसा में एक वैष्णव पुत्र जन्म हो गया वसुंधरा वसतिश्च कन्या, ये पृथ्वी की धन्य हो जाती है अगर एक बेटा अगर प्रभु भजन से मिल जाए, कितने लाभ है। इसलिए लोगों को कर्तव्य है हर बच्चों को भजन का शिक्षा दे, हाँ तो भजन करे तो हमारा भी कल्याण है। इसलिए उनका कथा में बहुत बहुत शिक्षा की बात है, हम यही कथा को विश्राम देते हैं। अभी दूसरा का प्रोग्राम अच्छा बहुत अच्छे से कृपा समय वचन अधिकार आपने हो वैसे जो
पीछे होगा अभी नहीं, तुम बोलो परे बोल दो परे की आज
अभी अभी आप सभी के समक्ष हम सभी के समक्ष कोई बात से रसानंद प्रभु जी ने ध्रुव चरित पर प्रकाश डालते तब का दर्शन को व्यक्त किया। ध्रुव महाराज के अंदर भले कुछ कामना हो पर तो देखा जाए वास्तव में उनकी कोई इच्छा या कामना नहीं थी, भगवान ने ही उनको वरदान दिया, 36,000 वर्ष निष्कंटक राज्य करने को आदेश भी दिया, अंत में अपने जड़ों में निष्काम भक्ति की बात कही और ध्रुव जी ने परम गति को लाभ किया। और भी एक बात कही, भक्ति का ऐसा प्रभाव है जिस प्रभाव से मृत्यु के सिर पर हाथ पैर धरते हुए ध्रुव महाराज जी रथ में बैठे और सीधा भगवत लोक को चले गए, जो कि यह ध्रुव लोक इस ब्रह्मांड के अंतर्गत थे, वो भी भगवान विष्णु का लोक है और वो विष्णु लोक ध्रुव जी के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ ध्रुव लोक का। प्राप्त कर ले, चाहे किसी के अंदर कोई कामना वासना या न हो, एकमात्र आराध्य देवता कौन है? भगवान श्री लोग भूले भटके के बहुत से देव देवताओं की उपासना में लगे। श्री सुखदेव जी महाराज इसी बात को कहते हैं, बहुत से देव देवताओं की पूजा न करके एकमात्र भगवान श्री हरि की आराधना से उन्हीं से सभी कुछ प्राप्त होता है और उन्हीं से जीवन बनता है। उत्तरपाद के वंश का विस्तार करते हुए कहा, जैसे कन्याओं के चरित्र को दिखाया इसी प्रकार उनके पुत्रों के वंश का विस्तार करते हुए दिखाया कि उत्तरपाद के पुत्र के रूप में ध्रुव माना जाए, उन्हीं के पीढ़ी दर पीढ़ी में उन्हीं के वंश में एक महाराज हुए जिसका नाम वेद राजा है। पैदू को वेद महाराज ऐसे नास्तिक निकला कि भगवान विष्णु की पूजा सर्वत्र बंद करा। बोले विष्णु की पूजा क्यों की जाएगी? हवन नहीं करना है, पूजा पाठ आदि नहीं होना है, पूजा करनी है तो मेरी पूजा करें, मैं ही विष्णु रूप में हूं, समस्त देवता मेरे अंदर में विराजमान है, मैं राजशक्ति के रूप में, भगवान विष्णु राजशक्ति के रूप में है, राजा के अंदर है, इस प्रकार अपनी पूजा करो। ऐसे नास्तिक फैल गए, नास्तिकता फैली जो कि ऋषियों ने बहुत समझाया पर एक भी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। अब तो ऋषियों ने
मूत्र पंडा इससे
बड़े हुंकार किए, ऐसे हुंकार भरा
जान नाम है ताकि देव को उन लोगों को दिए
हुंकार से वेद राजा का प्राण उड़ गया। तो उनका शरीर
विठल समाज नाम आया, ये विठल समाज
अंत में देखा
गुरु है योदर गुरु सकल
कि राजा भी राज्य सर्वत्र अराजकता फैली,
तारपुर
सभी में मट गया था, तो ये आठ कार्ड मुझको दिए
है
में मट गया था।
हाँ,
आया था सभी
ये नाम पूरा क्यों नहीं दिया? जनार्दन भट्ट मुरारी लाल कौन है?
मुरारी लाल
चतुर्वेदी है।
हाँ चतुर्वेदी है, लिखना चाहिए ना, अध्यापक के रिटायर हुए
तो लिखना चाहिए, बलदेव प्रसाद चतुर्वेदी
है। हाँ ये गूगल में प्रधानाध्यापक के रिटायर हुए,
ये लिखना चाहिए, हरिहर जी,
हरिहर जी पांडे
बसंत लाल, बसंत लाल को कह देंगे यदि होंगे तो जो उनको संचालन करना होगा सभा को।
ठीक है,
और किसको ले?
अरे कृष्ण चंद्र जी है जिनका नाम इसमें नहीं है,
एक तो जो है कृष्ण चंद्र अच्छे विद्वान है, आए भी थे पहले पंडित, निमंत्रण तो हम दे रहे हैं लेकिन ये नाम बिना नाम के होता तो उनको कार्ड दे दिए जाते हैं, नाम है इसी में भड़क जाएंगे पंडित नहीं, ये महाराज ये पंडित हैं और मिनटों में ही भड़क जाएंगे, नाम नहीं होगा तो उसमें नाम तो है ही नहीं, नाम उनके नाम है उनके नाम नहीं,
नहीं तो फिर पद में जैसे ये कितना आदमी का नाम दिया महाराज जी को पता नहीं था, इसलिए महाराज जी ने आप लोगों को
विचार, बिल्कुल सही है आप
ऐसा ही कहें, जब आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे नहीं,
आप हो चलूं
तो किसको किसको कहेंगे?
एक तो कृष्ण
राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्किसे नमः। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे। तन्नयमाम चरणांतिके। बहुत सुंदर कथा हो रही है, बहुत से रहस्यपूर्ण तत्वों को भी प्रकाशित किया जाते हैं। मेरा हमारे मठवासियों से निवेदन है कि भजन करने के लिए वो आए हैं सर्वस्व त्याग कर, पूरे निष्ठा के साथ में उनको भजन करने चाहिए। यदि वो आए हैं तो सवेरे मंगल आरती में जरूर उनको उपस्थित करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में भक्ति का ये अंग बतलाया है, सवेरे के कीर्तन में कथा में भी उपस्थित होना आवश्यक है। आज हमने देखा 6 बजे सब लोग सोए थे, कल से यदि सोए रहे तो मैं ही सवेरे 1 बाल्टी पानी लेकर के उनके ऊपर में ढाल करके जगा दिया करूंगा रोज। इसलिए आप लोग सावधान रहे, उसके पहले ही उठ जाइए। मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ, 5:30 बजे तक अपना सब कुछ कर लेता हूँ, हरिनाम इत्यादि सब, तब टहलने जाता हूँ, फिर ठाकुर जी का दर्शन करता हूँ। अपनी युवावस्था में जब तक शरीर में बल था, हमने देखा है हमारे गुरु जी नरहरि ठाकुर और सब प्रभुपाद के जितने शिष्य थे, जहां घंटा बजा ठाकुर जी के सामने आरती के आदि होते थे, भजन की लालसा थी। और आज कोई आरती में नहीं आता न कीर्तन में आता, ये तो ठीक बात नहीं है। इसलिए निवेदन है कि कल से सब आ जाए, नहीं तो मैं जाकर के उनको उठाऊंगा, और कैसे उठाऊंगा बतला दिया। दूसरी बात, बहुत सुंदर कथा चल रही है। अभी पुरंजन उपाख्यान आप लोगों ने सुना, एक दिन जन्म लिया, फिर बड़े हुए, बुढ़ापा आई, करोड़ों डॉक्टर और साइंटिस्ट मिल करके बुढ़ापे को 1 सेकंड के लिए बंद नहीं कर सकते, और फिर मृत्यु आएगी, मृत्यु से भी सारा विश्व एक व्यक्ति को बचा नहीं सकता, जरूर मरना पड़ेगा। और मरने पर क्या ले जाएंगे साथ में, अपनी पत्नी जाएगी न बेटे जाएंगे न रुपया पैसा, एक भी छदाम साथ में जाएगा नहीं जाएगा, तो गधे की भांति सारा दिन परिश्रम किस लिए कर रहे। सामाजिक जो कल्याण का कार्य कर रहे हैं उनको भी वो काम नहीं देगा, काम देगा बस हरि भजन, हरि नाम, भगवत भजन। इसलिए यदि कुछ करना भी है तो जीवन निर्वाह के लिए करो, किंतु भजन जरूरी होना चाहिए। और भजन में भी नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ। भगवान ने अपनी सारी शक्ति, सारी कृपा और सारे गुण नामों में भर दी है, जो कृष्ण नहीं कर सकते वो भी नाम कर दे। इसलिए खूब श्रद्धा के साथ में इसको कीजिए। अभी पुरंजन उपाख्यान सुना, इसके बाद में भागवत में वर्णन है ऋषभ देव जी का, भगवान के वो कोई कला अवतार थे, सत्तावेश अवतार थे। उनके पुत्र 100 हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, उन्हीं के नाम के ऊपर में भारत का नाम, इस हिंदुस्तान का नाम भारत वर्ष पड़ा। वही राजा चक्रवर्ती राजा थे, 50 वर्ष की उम्र में, आधी उम्र होने पर अर्थात 50,000 वर्ष की आयु जब हो गई, संसार को देखा समझा बुझा और मल त्याग की भांति जैसे पैखाना त्याग करते हैं, पैखाना जोर से लगने पर चित्त चंचल हो जाता है और जब पैखाना कर लिया तो चित्त शांत हो जाता, ऐसे ही मलवत मल की भांति उन्होंने संसार को छोड़ दिया। इतना बड़ा भारी राज्य, सुंदर पत्नी पुत्र नाती सबको छोड़ करके वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। निविष्ट होकर के भगवान का भजन करते करते भावावस्था में पहुंच गए। एक दिन इस प्रकार से बैठे हुए भजन कर रहे थे ध्यानस्थ होकर, इतने में देखा एक हिरण नदी के किनारे चर रही थी और एक बाघ ने उसको देख करके गर्जन करते हुए उसके ऊपर में झपटा। हिरणी प्राण बचाने के लिए जोर से कूद कर नदी को पार करना चाहा और वो गर्भवती थी, उसका मृग शावक नदी में गिर गया और वो बेचारी उस तरफ में गिर करके करुण नेत्रों से अपने बेटे की तरफ में और भरत जो वहां पर बैठे थे उनके तरफ में देखे, क्या आप हमारे बच्चे को बचा सकते हैं? उनको देख करके भरत जी उठे और उठ करके दौड़ करके डूबते हुए बच्चे को नदी से अपनी गोदी में उठा लिया, अपने आश्रम में ले आए और गैया का दूध पिला पिला करके उसको पालन पोषण करने लगे और हिरण से इतनी ममता हो गई, प्यार हो गया कि वो इधर उधर चला जाता तो सोचते जी कहाँ गया कहाँ गया। और वो भी हिरण ऐसे घुल मल गया जनमानो उनका पिता हो। जब वो ध्यान में बैठते तो अपने सिर के छोटी छोटी सिंगों से इस प्रकार से करता और उनकी गोदी में बैठ जाता और वो बड़े आनंदित होते। धीरे धीरे भजन तो चूल्हे में गया और उसके प्रति अत्यंत आसक्त हो गए। एक दिन उनका काल आया, सबकी मृत्यु होती है और उसी समय में हिरण देखा जी जंगल से बहुत से हिरण दौड़ करके उधर से जा रहे हैं, वो भी अपने भाई बंधुओं को देख करके झट उनमें मिल गया, दौड़ करके चला गया। अब तो ये कहते हैं हिरण कहाँ गया, आज जिसकी चरण धूलि पड़ने से देश पवित्र हो जाता है, वहां पर यज्ञ करने के लिए स्थान हो जाता है, वो प्यारा हिरण न जाने कहाँ गया, कोई बाघ खा लिया हो क्या हो, चिंता करने लगे। इतने में मृत्यु में आई और उसकी चिंता करते करते हिरण बन करके आया। मृत्यु के समय में जो जैसा चिंतन करता है उसमें घुल मिल जाता है दूसरे शरीर में, उसको ऐसे ही जन्म हो जाता है। इसकी एक और भी शिक्षा है, यदि प्रहलाद भरत जी मृग की चिंता करते 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 हिरण की चिंता करते करते हिरण हुए और हम लोग कृष्ण की और उनके परिकरों की गोपियों की चिंता करते 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 शरीर छोड़े हैं उसमें, तो क्या होगा, हम भी गोपी देह प्राप्त करके कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। इसकी ये एक और भी शिक्षा है, इसलिए क्यों नहीं अभी से चिंतन किया जाए कृष्ण की लीलाओं का और उसमें ऐसे निविष्ट हो जाया जाए कि और किसी चीज की सुध बुध न रहे, बस कृष्ण की और गोपियों की चिंता करते करते राधा जी की दासी होकर के जन्म ग्रहण करेंगे, अब इससे अधिक लाभ क्या होगा। इस प्रकार से हिरण हुए, अपूर्व जन्म की बात उनको याद थी, बस इस जन्म में हिरणों के साथ में नहीं घूमते, ऋषियों के पुलस्त आश्रम में जहां पर गंगा और सोन मिली है उसके किनारे में घूमती, वहीं पर ऋषियों की सभा में हरी कथा सुनते और प्यास लगने पर गंगा जी का पानी पी लेते। कुछ दिनों के बाद में उनकी भी मृत्यु का समय आया, गंगा जल में खड़े होकर के शरीर को छोड़ दिया। तीसरे जन्म में ब्राह्मण घर में जन्मे, पूर्व जन्म की भी बातें याद थी, भूले नहीं थे, इसलिए बचपन से ही गूंगे बन करके रहने लगे, मानव पागल हो इस प्रकार से रहने लगे। उनके पिताजी ने कुछ बड़े होने पर 5 वर्ष होने के बाद में उनको ब्रह्म गायत्री का ओम उच्चारण कराने लगे, तो ओम उच्चारण ही नहीं कर सके, जानबूझ करके पागल होकर के बहुत चेष्टा की, गायत्री मंत्र नहीं उच्चारण कर सके, जो भगवान की चिंता में सब समय लगा हुआ है वो गायत्री का मंत्र न भी करे तो कोई बात नहीं, किंतु सदाचार के नियम के अनुसार में हम सबको करना चाहिए, जरूर गायत्री करना चाहिए पुरुषों को और स्त्रियों को उससे भी ऊंचा गोपाल मंत्र और काम गायत्री करनी चाहिए। अब तीसरे जन्म में ब्राह्मण होकर के जब उसके पिता मरने लगे तो उन्होंने किसी प्रकार से उपनयन तो दे दिया और कुछ नहीं सिखा दिया, अपने और बेटों के बोले इस पर जरा ध्यान रखना, बेचारा पागल सा रहता है, इसको कोई ज्ञान नहीं। चले जाने के बाद में उनके और भाइयों ने उनको लपसी टपसी चोकर इत्यादि सिद्ध करके जो कुछ भी दे देती खा करके बस में उठता जरा, कोई चिंता नहीं, जहां पर रह जाते वहीं पर चिंतन करना लगते भगवान। एक दिन उनके भाइयों ने उनके खेत के मेड़ के ऊपर में बैठा दिया, चिड़िया और जंगली जानवर खा जाते हैं, तुम रक्षा कर लो, वहीं पर बैठ गए। और इतने में एक राजा थे देश के, उनका नाम था रहुगण, वो कपिल देव जी के यहाँ या किसी महात्मा के निकट जा रहे थे तत्व ज्ञान श्रवण करने के, पालकी में चार कहार लगे थे, रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया, उन्होंने कहा कि ढूंढ लाओ किसी को, तो उनके पालकी वालों ने इधर उधर ढूंढा तो देखा एक नौजवान बस मोटा साटा तगड़ा बैठा हुआ है, उसको पकड़ ले आए, पकड़ ले आए तो भी चले आए, पालकी में लगा दिया तो वो लग गए, किंतु पालकी में चलते समय चीटी या कोई भी कीड़ा न हमारे पैर से दब जाए, इसलिए देख देख करके चलते थे, इसलिए और कहारों के साथ में उनके पैर ठीक से मिलते नहीं थे, पालकी दुलने लगी हिलने लगी। राजा ने कहा कहारो ठीक से चलो, क्यों पालकी हिलाते हो? कहारों ने कहा जी हम तो ठीक चल रहे हैं, ये चौथा जो व्यक्ति है ये नहीं ठीक से चल रहा है। तो उन्होंने इशारा से कहा तुम मोटे ताजे हो, तुम पालकी लेकर के नहीं चल सकते, फिर भी चलो, नहीं तो मैं राजा हूं तुम्हें दंड दूंगा जब भूल जाएगा सब कुछ। उन्होंने सह लिया, ब्रह्मवेत्ता होने के पर भी सुन सम और सहिष्णु रहे, कुछ नहीं बोले, चलते रहे किंतु वैसे ही। अरे तुमको बतलाया फिर तुम सीधे नहीं चल रहे, मोटे टटे हो छोटे, फिर भी नहीं चल सकते, मैं तुम्हें दंड देता हूं। इतने भरत जी को दया आ गई और उन्होंने कहा यदि पालकी है तो ढोने के लिए ही है, किंतु कौन है मोटा कौन है पतला, कौन पालकी ढोने वाला है, राजा कौन है, कुछ ऐसे ही गुप्त रूप से उनको कहा भाई ये कौन है इतनी तत्व ज्ञान को बतला रहा है, मैं तो इसीलिए जा रहा था कपिल देव जी के आश्रम में, ये कपिल देव जी तो नहीं है, बस पालकी से कूद करके नीचे आ गए और उनके चरणों में भरत जी के चरणों में सिर नवा दिया। बोले महाराज आप कौन है गुप्त वेश में जो कर रहे हैं, मैं इसी को प्रश्न करने के लिए और इसका उत्तर जानने के लिए कपिल देव जी की यहां जा रहा था, आप कपिल देव जी तो नहीं है या सनत सनंदन शरद कुमार में से कोई है? उनको दयाई बतलाया तुम जानते हो तुम्हारे पूर्व पुरुषों में भरत नाम के एक राजा थे, ओ मैं उनको खूब जानता हूं, मैं वही हूं। सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए और चरणों में गिर गिर करके बार बार माफी मांगने लगे। मैंने आप आपने जो कहा कौन मोटा है कौन पतला है किसको कष्ट है, कहार है तो राजा है तो उनको पालकी धोना ही कर्तव्य है, ये आपने कहा, इसका मैं मतलब नहीं समझ सका। मैं तो ये समझता हूं कि चूल्हे पर एक बटलो ही रख दी जाए और उसमें पानी रख दिया जाए, पानी जब खौलने लगे तो उसमें चावल दे दो पक जाएगा। और आप कहते हैं आत्मा अजर अमर सब समय प्रसन्न है, उसको कर्म बंधन नहीं है, वो मोटा ताजा तगड़ा और दुबला पतला नहीं है, वो आत्मा है, भगवान का विभिन्न अंश है, उसको इस जगत से सुख दुख से मतलब नहीं है। तो वैसे ही इस माया में जो कष्ट होते हैं इसके अंदर में इस शरीर है, शरीर के ऊपर में भीतर में मन बुद्धि अहंकार का एक सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर में आत्मा है, तो आत्मा को कष्ट नहीं होता होगा शरीर को कष्ट होने से। तब उन्होंने बतलाया आत्मा अजर अमर शाश्वत भगवान का नित्य सेवक है, माया ने उसको भगवान को भूलने की वजह से इस जगत में भेज दिया है जबरदस्ती। हम लोग रिफ्यूजी हैं, हम यहाँ के व्यक्ति नहीं हैं और कुछ दिनों में जरूर शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा, इसलिए बुद्धिमान पुरुष भगवान का भजन करके भगवत तत्व को जान ले। इस प्रकार से उनको समझाया और बोले रहु गड़ई तत्तपसा न जाती, देखो अग्नि की पूजा करने से, सूर्य की पूजा करने से, ब्रह्मचर्य से, संन्यास से और किसी तरह से संसार से उद्धार नहीं होगा, जब तब किसी भी काम से नहीं होगा, ज्ञान से भी नहीं होगा, योग से भी नहीं होगा, केवल मात्र जो भगवान के प्यारे भक्त हैं उनके चरणों की रज से अभिषिक्त तो कोई यदि हो स्नान करे और उनके अनुसार में चले तभी तो उसका उद्धार हो सकता है। इस प्रकार से उनको उपदेश दे करके फिर वो भरत जी चले गए, वो भी चले गए। एक दिन और मेन पे बैठे हुए थे पागल जैसे, इतने में चोरों ने कुछ संकल्प किया था कि आज यदि धन मिलेगा तो हम दुर्गा जी को बलि चढ़ाएंगे। उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ भी लिया, पकड़ लिया किंतु वो भाग गया। जब भाग गया तो वो खोजते खोजते मेड़ पर पहुंचे और इनको सब लक्षणों से युक्त सुंदर पुरुष देखा, इनको पकड़ लिया। पकड़ लिया तो वो पीछे जैसे जैसे ले जाने लगे वो भी चलने लगे, डर की कोई बात इनको नहीं, जहां ले जाने भगवान को जो अपने आत्मसमर्पण कर देता है उसको कहीं भी डर नहीं। लेकर के गए वहां दुर्गा जी के स्थान पर, वहां पर यज्ञ हो रहा था, उसमें नर बलि देने की तैयारी हो रही थी, इनको मलपुए और गुड़ और क्या क्या खिलाया, गले में लाल कपड़ा भी बांध दिया, समझ रहे हैं कि हमको मरने की बलि देने की तैयारी हो। और एक जुप कास्ट होता है जिसमें बकरी को गाय को भैंस को सिर दे करके और उसे काटते हैं, इनको भी वहीं पर ले जा रहे थे, उसमें जुप में भी लगा दिया। अब जब ही फरसा उठाया तो ही देवी का वो जो मूर्ति थी फट गई और उसमें से निकली और निकल करके उन सबको शरीर को सबको काट दिया और काट करके यज्ञ में आहुति दी और इनसे बोली प्रभु आप इस तरह से लोगों की वंचना मत की, आप ऐसा भाव मत दिखलाए पागल जैसा, नहीं तो जगत के लोग आपके प्रति अनाचार करेंगे, आपको कष्ट देंगे। आप ऐसा न करें, प्रार्थना करके, और फिर वो भी लुप्त हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, और ये भी चले आए। इस तरह से भरत जी का चरित्र है। उन्होंने किस प्रकार से संसार को अनित्य जान करके जुआवस्था ही में छोड़ दिया, और किस प्रकार से भजन में भजन भगवत भजन करने आकर आसक्त हो गए संसार में एक हिरणी के बच्चे। आप लोग भी यदि किसी प्रकार से किसी पुत्र में स्त्री में ममता हो गई और भगवान को भूल गए तो आपको भी उसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा, स्त्री के रूप में, बेटे के रूप में। इसलिए सावधान हो जाइए और भरत से ये शिक्षा लीजिए। इस प्रकार की बहुत सी शिक्षा है। आज मैं भी यहीं पर कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अब तो समय होगा, आरती होगी, और आप लोगों को बहुत धन्यवाद है। इतने व्यक्ति आए हैं, मुझे तो ऐसी कल्पना नहीं था कि इतने आदमी आएंगे। बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है।
Oh,